इस्लामी जगत।
श्रोताओं, कार्यक्रम इस्लामी जगत में आपका स्वागत है। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। हमने इससे पहले इस्लामी जगत की आर्थिक व राजनीतिक क्षमताओं की बात की थी और कुरान की आयतों के आधार पर मुसलमानों के एकजुट हो जाने के बिंदु का उल्लेख किया। आज हम इस बात का जायजा लेंगे कि पैगंबर इस्लाम के जीवन काल में मुसलमानों में एकता व एकजुटता का रहस्य क्या था।
इस्लाम से पहले के दौर में गहरा जाति व काबाली विवाद पूरे अरब जगत में फैला हुआ था। इस बिखराव व मतभेद के कारण हमेशा रक्त रंजित लड़ाइयाँ होती रहती थीं। इन हालात में इस्लाम ने एक ईश्वरवाद का संदेश दिया और इसी संदेश के आधार पर एकता, भाईचारे तथा हर प्रकार के द्वेष से दूर रहने की भावना जगाई। इस्लाम धर्म ने तकवे को आधार बनाया तथा जातीय, कबाली, नस्ली व भाषाई अंतर को नकारते हुए एकता की बुनियाद डाली। पैगंबर इस्लाम ने अपना मिशन शुरू करने के समय से लेकर अपने स्वर्गवास तक कुरान की आयतों के माध्यम से ईश्वरीय शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराया और मुसलमानों के बीच भाईचारे और समरसता की भावना मजबूत करने के लिए काम किया। यहाँ तक कि आसमानी धर्म के मानने वाले गैर मुस्लिमों से भी तालमेल उत्पन्न किया।
इस्लाम के आरंभिक दौर का इतिहास बताता है कि पैगंबर इस्लाम ने एकेश्वरवाद को इस प्रकार केंद्र में रखा कि अज्ञानता के दौर में मतभेद फूट पैदा करने वाले कारक हाशिए पर चले गए। पैगंबर इस्लाम अरब थे और कुरान भी अरबी भाषा में उतरा। उन्होंने अपना अभियान हर प्रकार के नस्ली, जातीय तथा भाषीय मतभेदों से ऊपर उठकर शुरू किया और अरब व गैर अरब मुसलमानों के संबंध में उनकी समानता पर आधारित दृष्टि और बर्ताव उदाहरणीय हैं। सलमान फारसी, बेलाल हबशी, सहीब रूमी जैसे लोगों का पैगंबर इस्लाम के ज़माने में इस्लाम धर्म स्वीकार करना और फिर उन्हें पैगंबर इस्लाम के साथियों के बीच विशेष सम्मान मिलना इस बात का प्रमाण है। यही वजह थी कि इस्लाम धर्म अरब प्रायद्वीप में फैल जाने के बाद सीमाओं से बाहर निकला और दुनिया के अन्य भागों में फैलता चला गया। पैगंबर इस्लाम ने जातीय व कबाइली भेदभाव और अत्याचार का रास्ता बंद करने के लिए मुसलमानों को एक दूसरे का भाई ठहराया और कहा कि मुसलमान कभी भी अपने भाई पर अत्याचार नहीं कर सकता और कभी भी उसे किसी अत्याचारी के हवाले नहीं कर सकता।
पैगंबर इस्लाम ने मुसलमानों की एकता व एकजुटता और हर प्रकार के फूट और मतभेद से दूरी को ईमान की निशानी बताया। उन्होंने आखिरी हज के अवसर पर एक बार फिर स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस्लाम में श्रेष्ठता का आधार तकवा और ईमान है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि किसी भी अरब को गैर अरब पर और किसी भी गैर अरब को अरब पर श्रेष्ठता नहीं है, श्रेष्ठता का आधार केवल तकवा है। उन्होंने एक ईश्वरवाद के आधार पर मुसलमानों की एकता को मजबूत किया। पैगंबर इस्लाम की जीवनी में भी इस बात का अनेक व्यवहारिक उदाहरण हैं जिनसे ये साबित होता है कि एकता इस्लाम के संदेश का मूल तत्व है। जैसे कि उन्होंने मक्का से पलायन करके मदीना जाने वाले मुसलमानों और मदीने के स्थानीय मुसलमानों के बीच किसी भी प्रकार के भेदभाव का रास्ता बंद करने के लिए और उनके बीच हार्दिक संबंध स्थापित करने के लिए बड़ा ठोस कदम उठाया जिससे यहूदियों और मुनाफिकों की योजनाओं पर पानी फिर गया। वो मुसलमानों के बीच मतभेद फैल जाने की आशा लगाए बैठे थे। पैगंबर इस्लाम ने मक्के से आने वाले मुसलमानों और स्थानीय मुसलमानों को एक दूसरे की धन संपत्ति का संरक्षक बताया, उन्हें एक दूसरे का भाई और अभिभावक बनाया। मदीने के मुसलमान मक्के से आने वाले मुसलमानों को अपने घरों में ठहराए। मक्के से पलायन करके मदीना पहुंचने वाले मुसलमानों और मदीने के स्थानीय मुसलमानों के बीच आर्थिक अंतर को समाप्त करने की दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ये भी दुश्मन की साजिश को विफल बनाने वाला कदम था।
पैगंबर इस्लाम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी यह प्रयास किया कि नस्ली और कबायली मतभेद की जड़ खत्म कर दे। इसीलिए उन्होंने अंतिम क्षणों में एक खुतबा दिया जिसमें उन्होंने मुसलमान को सचेत किया कि कहीं वह आपसी मतभेद में पड़कर उसी अज्ञानता के काल में न लौट जाए जो इस्लाम के आगमन से पहले था। पैगंबर इस्लाम ने इस्लामी समाज को मतभेद से बचाने के लिए अपनी अंतिम हज के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा निर्धारित किया, लेकिन पैगंबर इस्लाम के इस स्पष्ट आदेश के बावजूद जो मुसलमानों की प्रतिष्ठा और गरिमा की रक्षा करने वाला था, पैगंबर इस्लाम के स्वर्गवास के बाद उनके इस आदेश को नज़रअंदाज करते हुए कुछ मुसलमान सकीफा नामक स्थान पर एकत्रित हो गए और पैगंबर इस्लाम के उत्तराधिकारी के चयन के बारे में बातचीत शुरू हो गई। खेद के साथ कहना पड़ता है कि सकीफा में ही मतभेद और विवाद का बीज बो दिया गया। खलीफा के चयन की बहस में जमकर विवाद हुआ। इस तरह सकीफा पैगंबर इस्लाम के स्वर्गवास के बाद मुसलमानों के बीच मतभेद और टकराव की जड़ बन गया। विवाद कहीं व्यापक लड़ाई का रूप धारण न कर ले, इस उद्देश्य से हजरत अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी सूझबूझ के साथ कदम उठाया और मुसलमानों की एकता की रक्षा की।
इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने अधिकार से पीछे हट गए और उन्होंने मुसलमानों की एकता की खातिर खलीफा के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से परहेज किया। जब सकीफा की घटना घटी और उसके नतीजे में हजरत अबू बकर खलीफा बन गए तो इस प्रकार से रहे और इस तरह से कदम उठाया कि अबू बकर के अन्य विरोधियों को लाभ उठाने का मौका न मिले जो अपने कुछ स्वार्थों के कारण हजरत अबू बकर का विरोध कर रहे थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने ऐसी रणनीति अपनाई कि इस्लाम के वैभव और मुसलमानों की एकता को कोई नुकसान न पहुंचे। जब अबू बकर का विरोध बहुत बढ़ गया और इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की बैत की जाए अर्थात उन्हें खलीफा बनाया जाए, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने विरोध कर रहे लोगों को फितने की ओर से सचेत किया। उन्होंने कहा कि जाति व नस्ली देश के तहत कदम उठाने की कोशिश कदापि न की जाए।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस अवसर पर अपने भाषण में कहा कि फितने की लहरें उठ गई हैं, इस्लाम की नौका भंवर में फंस गई है और अरब दुनिया के हर कोने में नया फितना खड़ा हो गया है और हर फितने से एक लहर निकली है। मदीना जो इस्लाम का केंद्र है इन्हीं लहरों में थपेड़े खा रहा है। आज हर कदम से यह तूफान तेज होगा तथा आंदोलन के स्रोत को डुबा देगा। मतभेद भड़काने वाले कामों से हाथ खींच लेना चाहिए। जातीय द्वेष और घमंड को हाशिए पर डाल देना चाहिए, इसीलिए कि यह घमंड इंसानों के हाथों के बनाए हुए ताज की भांति है जिनकी कोई कीमत नहीं है।
मदीने के लोग एक बार हजरत अली अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि वो खलीफा के विरुद्ध कार्रवाई करें, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम उन्हें शांत किया करते थे और आग्रह करते थे कि धर्म की रक्षा हर चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। पहले खलीफा के शासन काल में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा की भी बहुत मदद की। वो भी संचालन और प्रबंधन के मामलों तथा युद्ध की रणनीति के बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम से परामर्श लेते थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम राजनीतिक व सामाजिक मंचों पर इसलिए मौजूद रहते थे और खलीफा की मदद करते थे कि इस्लामी समाज की एकता बनी रहे। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये शैली बाद के दो खलीफाओं के ज़माने में भी जारी रही। हजरत उमर के खलीफा बनने के बाद भी हजरत अली ने उनकी मदद की, इसलिए कि यदि हजरत अली अपनी सलाह न देते और हजरत उमर की मदद न करते तो संभवतः कि इस्लामी समाज को नुकसान पहुँचे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर की इतनी मदद की और इतने मुश्किल समय में काम आए कि हजरत उमर ने कहा कि यदि अली न होते तो मैं मर जाता।
हजरत उस्मान को खलीफा बनाने के लिए जो शैली अपनाई गई थी हजरत अली अलैहिस्सलाम उससे असहमत थे, लेकिन फिर भी इस्लाम की रक्षा के लिए और मुसलमानों का गौरव बढ़ाने के लिए अपनी पुरानी शैली जारी रखी। जब उस्मान के सामाजिक और राजनीतिक फैसलों पर पूरे इस्लाम समाज में असंतोष भर गया तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान को नसीहत की कि अपने रिश्तेदारों को प्राथमिकता देने और लाभ पहुंचाने की अज्ञानता के दौर की परंपरा को इस्लामी समाज में न फैलाए। जब आम मुसलमान हजरत उस्मान के शासन से तंग आ गए तब भी हजरत अली अलैहिस्सलाम का यह प्रयास रहा कि मुसलमानों के बीच मतभेद न फैले और विद्रोह की आग न भड़के।
حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں کو مسلمانوں کے بیچ متبھید پھیلانے کی اور سے سچیت کیا اور اسلامی سماج کے بھیتر متبھید پھیلنے کے خطرناک پریڈاموں کی اور دھیان کیندرت کروایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھاشن میں کہا کہ متبھید اور پھوٹ سے پرہیز کرو، اس لیے کہ الگ راگ الاپنے والا انسان شیطان کا چارہ بن جاتا ہے، جس طرح گلے سے دور ہو جانے والی بھیڑ بھیڑیے کا آہار بن جاتی ہے۔
حضرت علی علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ بنی ہاشم کے کچھ لوگ قریش کے لوگوں سے جاتی وشیوں پر بحث کر رہے ہیں تو انہوں نے منع کیا اور سندیش بھیجا کہ ان متبھیدوں میں نہ پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی 5 شاسن میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ویرودھیوں سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اسلامی ایکتا کی رکشا کریں۔ وہ ویرودھیوں کو اس سمے تک سہن کرتے رہتے تھے جب تک کہ وہ اسلامی شاسن کے ورودھ ہتھیار نہ اٹھا لے، اس سمے تک راجکوش سے انہیں ان کا حق بھی دیتے رہتے تھے۔
حضرت علی علیہ السلام نے اپنے پوتر حضرت امام حسن علیہ السلام سے اپنی آخری وصیت میں ایکتا کو بنائے رکھنے اور متبھید سے دور رہنے پر بل دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ ایشور کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور متبھید سے دور رہو۔ میں نے پیغمبر اسلام کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگوں کے وواد حل کر کے انہیں آپس میں ملا دینا نماز اور روزے سے بھی شریشٹھ کام ہے۔ شوتو، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ اگلے کارکرم تک کے لیے ہمیں انمت دیں۔ خدا حافظ۔